حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں۔ یہ وفات سے ایک مہینہ پہلے کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے بعد کا واقعہ ہے، بالکل آخری دنوں میں، زندگی کے آخری ایام کی یہ بات ہے۔ عشاء کی نماز پڑھائی، فلما سلم، جب سلام پھرایا، قام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی کچھ بات ارشاد فرمائی، فقال، اس کھڑے ہو کر جو بات ارشاد فرمائی اس میں فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ہاذی، آج کی تمہاری رات یاد رکھ لو، آج کی تمہاری یہ رات یاد رکھ لو، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، آج کی رات سے 100 سال پورے ہونے کے اوپر کوئی بھی وہ شخص باقی نہیں رہے گا جو اس وقت پر روئے زمین پر باقی ہے۔ خلاصہ حدیث شریف کا یہ کہ زندگی کے آخری ایام میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھائی، اور عشاء کے بعد کچھ دیر ہم کو نصیحت فرمائی۔ بس ترجمۃ الباب سے تو یہ جملہ مطابقت رکھتا ہے، فلما سلم قام فقال، عشاء کی نماز پڑھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ہم کو یہ بات ارشاد فرمائی، عشاء کے بعد علمی مجلس قائم کرنے کا ثبوت ہو گیا، ترجمۃ الباب کا اس بات ہو گیا۔ یہ ہو گیا نفس روایت کا مضمون۔ جو ترجمۃ الباب سے ربط رکھتا ہے، اب حدیث شریف سمجھو، حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ سن 10 ہجری کا واقعہ چلو گن لو، یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، تو پھر حساب لگاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ سن 10 ہجری کے اندر جو لوگ زندہ ہے، 110 ہجری کے آنے تک میں وہ تمام لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، کوئی بھی آدمی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل ہے۔ گویا آئندہ 100 سال جب پورے ہوں گے تو قرن اور زمانہ ختم ہو جائے گا، اور قرن اور زمانہ ختم ہونے پر اس وقت جتنے لوگ زندہ ہے اس میں سے کوئی بھی دنیا کے اندر سلامت زندہ باقی نہیں ہوگا۔ گویا اس حدیث کے ذریعے اپنی امت کی عمر کے چھوٹا ہونے کی خبر بھی دے دی کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوئی، لیکن میری امت کی عمر بہت چھوٹی چھوٹی، لہذا تم علم حاصل کرنے میں، علم سیکھنے میں، इल्म सिखाने में जल्दी जल्दी कोशिश करो। तुम्हारी उम्रें पिछली उम्मतों की उम्रों के मुकाबले में छोटी सी है। ये हो गई हदीस और हदीस का खुलासा। अब इस हदीस पर बहुत लेदे हुई है कि जिस रात हुजूर ने ये बात फरमाई उसके ठीक 100 साल होने पर कर्ण ख़त्म हो जाएगा और जितने लोग सन 10 हिजरी में मौजूद थे वो 110 हिजरी तक में मर मरा के ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी आदमी 110 के बाद जिंदा नहीं रहेगा, यानी जो 10 हिजरी में मौजूद है उसमें से। इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग मर जाएंगे, जो सन 10 हिजरी के बाद पैदा हुए वो 110 के बाद भी जिंदा रहेंगे, लेकिन जो लोग सन 10 हिजरी तक पैदा हो चुके हैं वो 110 के बाद जिंदा नहीं रहेंगे और दुनिया से उठ उठ के चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आखिरी सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर इब्ने वासिला रदी अल्लाहु ताला अन्हो सन 110 हिजरी में इंतकाल कर गए। ये 10 हिजरी में हयात थे, 100 साल गुजरने के ऊपर सन 110 हिजरी में इंतकाल कर गए। ये आखिरी सहाबी। और हज़रत अनस और हज़रत जाबिर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा की वफ़ात भी तकरीबन उसके करीब करीब है, करीब के ज़माने के अंदर है। इस हदीस शरीफ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो हज़रात सन 10 हिजरी के बाद पैदा होंगे वो भी 100 साल तक ज़िंदा रहेंगे, ये इस हदीस शरीफ का मफहूम नहीं। तो 10 के बाद जो पैदा होंगे वो भी 100 साल उम्र पाएंगे, ये हरगिज़ मकसूद और मफहूम नहीं है। हज़रतुल उस्ताद मुफ्ती सईद साहब नवरल्लाहु मरकदहु फरमाते हैं कि ये हदीस शरीफ कोई मंतिकी कायदा कुल्लिया नहीं है, कि मंतिक के जो कवायदे कुल्लिया होते हैं मुजीबा कुल्लिया, तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि कोई जुजिया बाकी न रह जावे। मंतिकी कवायद ऐसे बनाने की कोशिश की जाती है कि वो ऐसा मुजीबा कुल्लिया बने कि कोई भी जुजिया बाकी छूट न जावे। ये मंतिकी चक्करों में होता है, ये हदीस कोई मंतिकी कायदे कुल्लिया नहीं है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताबी इरशाद है जो अक्सरी अहवाल से मुतअल्लिक होता है, यानी एक खिताब है कि इरशाद है जिसमें दुनिया के अक्सर व बेशतर अहवाल की रियायत हुआ करती है। हज़रत का ये जुमला बड़ा निराला जुमला है कि इस हदीस को मंतिकी कायदे की रोशनी में न देखा जावे। ये इरशाद नबूवत है, खिताब नबूवत है जिसमें दुनिया के अक्सरी अहवाल की रियायत हुआ करती है। ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि बहुत से लोगों ने लंबी लंबी उम्र पर पाने वालों के वाकियात इस हदीस शरीफ से जोड़े हैं और सवालात खड़े किए हैं। मिसाल के तौर पर एक मसला हयात खजीर का, वो भी इस हदीस शरीफ के साथ जोड़ दिया कि भाई हज़रत खजीर हयात है कि इंतकाल कर गए। पीछे आपको इस सिलसिले में दो टोक बातें कुछ बतलाई गई थी। तो उसको इस हदीस के साथ जोड़ेंगे तो जो हजरात वफात खजीर के कायल है वो क्या कहेंगे कि सन 110 हिजरी में हजरत खजीर का इंतकाल कर जाना इस हदीस शरीफ की रूह से लाजमी चीज हो गया। जो वफात खिजर के कायल है वो लोग इस हदीस से ये इस्तिदलाल करेंगे, जो हयात खजीर के कायल हैं वो लोग इस रिवायत की ताबीलात करेंगे। इसलिए हजरत का ये जुमला बड़ा जामिया जुमला है कि इस हदीस को मंतिकी कायदे की नज़र से मत देखो कि खजीर या बाबा रतन इस तरह के जो वाकियात है वो सब भी तुम हदीस की रोशनी के अंदर हल करने जाओ, ये कोई लाजमी और ज़रूरी चीज़ नहीं है। अक्सरी अहवाल के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। अब एक तो तौजीहात दूसरी भी जहन में रख लो, जो हजरात हयात खजीर के कायल हैं वो इस रिवायत की क्या तौजीह करेंगे। नंबर एक, बाज़ों ने यूं फरमाया कि अला ज़हरिल अर्द, तो अर्द से मुराद लिया अर्द मदीना मुनव्वरा, के हुजूर के फरमान का हासिल ये है कि मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर जो इस वक्त जिंदा हैं आइंदा 100 साल के बाद वो जिंदा नहीं होगा। और हजरत खजीर अर्द मदीना के बाशिंदे नहीं हैं, वो तो मदीना से बहुत दूर के इलाके के बाशिंदे हैं, इसीलिए उनकी हयात से इस हदीस के ऊपर कोई इश्काल नहीं आता है। हदीस में है ना अला ज़हरिल अर्द, तो ज़हर अर्द से अर्द मदीना, और हजरत खजीर मदीना के रहने वाले नहीं। हुजूर के फरमान का मंशा मदीना की सरजमीन पर जो लोग जिंदा है आइंदा 100 साल के बाद वो लोग जिंदा नहीं होंगे। दूसरी तौजी, हजरत खजीर अला ज़हरिल अर्द रहते नहीं हैं, वो तो अला ज़हरिल मा रहते हैं, इसीलिए वो इस हदीस के मिसलाक नहीं हैं। ध्वनि कुरान के वाक्य में भी देख लिया ना आपने, सूरह कहफ के वाक्य में कि भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए, थक थका के वापिस आए, फरतद्दा अला आथारिहिमा कससा फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। तो जब वापिस आए 24 घंटे का आगे का सफ़र करके, तो एक तफसीरी रिवायत के मुताबिक समंदर के पानी के ऊपर झालरदार तख्त लगा करके हजरत खजीर चादर तान के सो रहे थे, तो वो तो सो रहे थे समंदर के पानी की सतह के ऊपर झालरदार तख्त लगा करके। तो हजरत खजीर का कयाम अला ज़हरिल अर्द है ही नहीं, वो तो अला ज़हरिल मा रहते हैं, इसीलिए इनका इस हदीस शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी तौजीह, हजरत खजीर ने आब हयात नोश कर लिया था इसीलिए वो इस हदीस से मुस्तसना है। इस हदीस में आम अफराद का बयान है कि 10 हिजरी में जो जिंदा थे 110 में नहीं होंगे, ये आम अफराद के एतबार से है। हजरत खजीर मुस्तसना, क्यों मुस्तसना? उन्होंने आब हयात चश्मे हयात से पी लिया था। नंबर चार, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मंशा अपनी उम्मत के अफराद के लिए है, کہ حضور سن 10 ہجری میں جب یہ حدیث فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی امت کے جو افراد ہے وہ آئندہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے، اور حضرت خضر حضور کی امت کے فرد نہیں ہیں، وہ تو بذات خود ایک مستقل نبی ہے، اسی لیے حضور کے ارشاد سے وہ خارج ہے۔ تو حضور کا یہ فرمانا لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد، اس سے حضور کی امت مراد ہے، اور حضرت خضر حضور کی امت میں نہیں ہے بلکہ وہ تو خارج ہے۔ پانچویں توجیہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک ان افراد کے بارے میں ہیں جو دنیا کے اندر مشاہد ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں نظر آتے ہیں، دنیا میں چلت پھرت کرتے ہیں، دنیا میں عام لوگوں کے ساتھ بود و باش اختیار کرتے ہیں، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سن 10 ہجری میں ہیں ان انسانوں میں سے کوئی بھی 110 ہجری میں باقی نہیں ہوگا، وہ انتقال کر چکا ہوگا، جبکہ حضرت خضر وہ تو رجال غیب میں سے ہیں، مستور افراد میں سے ہیں، وہ مشاہد افراد میں سے نہیں ہیں۔ تو حضور کے فرمان عالی کا منشا جو لوگ مشاہدے میں آتے ہیں، جو عام لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، خلط ملت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ آئندہ 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی روئے زمین پر نہیں ہوگا، اور حضرت خضر تو عالم ستر کے فرد ہے، عالم مشاہدہ کے فرد نہیں ہے، اسی لیے اس حدیث شریف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 6 توجیہات ہے، لیکن بہترین توجیہ جو حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمائی کہ یہ حدیث ہے جو ارشاد ہے، خطاب ہے، اکثری احوال کے اعتبار سے ہیں، ہر ہر فرد کو شامل کر لینا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی منطقی قاعدے کلیہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی بھی جزیہ اس سے باقی نہ رہے۔ جی جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، بتو میں نے رات گزاری، میری خالہ جان حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہے، کیا حضور کی رات کی عبادت ہے وہ میں سیکھوں، اور سیکھ کر کے میں بھی ایسی عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ اب حضور کی رات کی عبادت دیکھوں تو کیسے دیکھوں؟ تو کہا میری خالہ حضرت میمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، एक दिन में खाला जान के या मेहमान रुक गया, और मकसद ये ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत को देखूं, सीखूं और उसके मुताबिक अमल करूं। उस रात में हज़रत मैमूना की नमाज नहीं थी, औरतों को कुछ दिन आते हैं नमाज नहीं होती है, तो रात भी ऐसी थी कि हज़रत मैमूना की नमाज नहीं थी। हज़रत इब्ने अब्बास ईशा के बाद खाला जान के पास पहुँचे, एक तकिया, तकिए की चौड़ाई में सर रख कर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सो गए। पूरी तरह अभी सोए नहीं थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा पढ़ा करके तशरीफ लाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमूना के पास थे उस रात में, फी लैलतिहा का मतलब बारी थी, उस रात में हुजूर की बारी हज़रत मैमूना के पास थी, तो हुजूर ईशा पढ़ा के देर से आए। फसल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीशा, हुजूर ने मस्जिद के अंदर ईशा पढ़ाई, ثم جاء الى منزله, फिर अपने घर हजरत मैमूना की बारी पर तशरीफ लाए। फसल्ला अरबा रकात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार रकात नमाज घर आके पढ़ी। देखो हुजूर की ईशा की तरतीब भी समझते जाओ, मस्जिद में ईशा पढ़ाई, उसके बाद घर तशरीफ लाए, और घर तशरीफ ला के हुजूर ने चार रकात नमाज अदा फरमाई। इस चार की तौजीह करेंगे, दो रकात सुन्नत मौकेदा, दो रकात सुन्नत गैर मौकेदा, घर आकर हुजूर ने अदा फरमाई। सुम्मा नामा, फिर हुजूर और हजरत मैमूना तकिए की लंबाई में सो गए, एक ही तकिया, तकिए की चौड़ाई में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेहमान को सुलाया, और तकिए की लंबाई में हुजूर और हज़रत मैमूना दोनों सर रख कर के सो गए। सुम्मा कामा, इब्तिदाई रात आराम फरमाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। हुजूर की यही तरतीब थी, इब्तिदाई रात कुछ आराम फरमा लेते, उसके बाद तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते। रिवायतों में है कि हुजूर बहुत खामोशी से उठते ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो और किसी की नींद भी खराब ना होवे। इस्तिंजे से फारिग हुए, घर के अंदर एक मशकीज़ा लटक रहा था, उस मशकीज़े में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, और वुज़ू फरमाने के बाद हुजूर तहज्जुद के लिए खड़े हुए। यह है पूरा सुम्म कामा, चुपके से उठे, किसी को तकलीफ़ न हो, इस्तिंजा किया, लटकते मशकीज़े से पानी लिया, वुज़ू फरमाया और तहज्जुद के लिए खड़े हुए। सुम्मा काल, फिर हुज़ूर ने क्या फरमाया, नामल गुलयम, बचुंगड़ा सो गया, गुलाम की तस्गीर गुलेम और उसकी तस्गीर गुलयम, बचुंगड़ा, बच्चा बचुंगा, बचुंगड़ा, ये शफकत और मोहब्बत से तस्गीर की तस्गीर निकाल करके बोला जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उस वक्त छोटे से बच्चे थे, इसलिए जो है ये जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अभी जो नामल गुलयम वाला जुमला है, इसको बाज़ ने इस्तिफहाम पर महमूल किया कि हुजूर हज़रत मैमूना को पूछ रहे कि बचुंगड़ा सो गया, दरिया फरमा रहे, और बाज ने खबर पर महमूल किया कि बचुंगड़ा सोया हुआ है, उसको सोए रहने दो। औ कलिमतन तुष्बिहुहा, या इसके करीब करीब कोई जुमला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी इब्ने अब्बास के बारे में कोई ऐसा जुमला जिससे शफकत टपकती हो, हुजूर ने जो है इरशाद फरमाया। मालूम हुआ कि तस्गीर के दो मकसद होते हैं। तस्गीर लाना कभी बराए तहकीर होता है, और तस्गीर लाना कभी बराए शफकत हुआ करता है। यहाँ तस्गीर बराए तहकीर नहीं है, बल्कि यहाँ तस्गीर बराए शफकत का बयान है। ये हुजूर ने बहुत शफकत से फरमाया, जैसे कि एक लड़कवा जग रहा है या सो गया, इस तरीके से बचुंगड़ा गुलयिन। सुम्मा कामा फकुमतु अन यसारी, अभी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी उठ गए, उन्होंने भी वजू किया, इस्तिंजा किया, तैयारी की, तहज्जुद की। फकुमतु अन यसारी, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ खड़ा हो गया। फजालनी अन यमीनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दाहिनी तरफ खड़ा कर दिया। मैं बाईं तरफ खड़ा था, हुजूर ने मुझे दाहिनी तरफ खड़ा कर दिया। पीछे अदब के बयान में भी आपको ये वाकिया सुनाया था। फसल्ला खमसर कातिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 5 रकात पढ़ी। इस जुमले को समझो कि 5 रकात पढ़ी उसका मतलब क्या है। देखो, पहले ईशा पढ़ाई हुजूर ने मस्जिद में, बराबर, फिर घर आके कितनी रकात पढ़ी? 4 रकात। अब तहज्जुद में 5 रकात पढ़ रहे हैं। इस 5 रकात का मतलब क्या है वो समझो। अव्वलन हुजूर ने 2-2-2 करके 6 रकात पढ़ी। 2 पढ़ी सलाम, 2 पढ़ी सलाम, 2 पढ़ी सलाम, 6 रकात हो गई। उसके बाद थोड़ी देर वक्फा किया। जब 6 रकात तहज्जुद अदा हो गई तो थोड़ी देर के लिए हुजूर ने वक्फा फरमाया, और उसके बाद मजीद 2 रकात तहज्जुद पढ़ी, और फिर 3 रकात वितर पढ़ी। तो 6 रकात मुसलसल तहज्जुद पढ़ने के बाद वक्फा किया, और वक्फे के बाद 2 तहज्जुद 3 वितर, उसको रावी ने 5 रकात पढ़ने से ताबीर किया। समझ में आया खुलासा 5 रकात का मतलब क्या? ये है 5 रकात का मतलब। सुम्मा सल्ला रकातैनी, और उसके बाद सुबह सादिक होते ही फजर की 2 रकात सुन्नत पड़ी। ये आम मामूल था कि तहज्जुद से फारिग होने के बाद एन सुबह सादिक के वक्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात सुन्नते मौकेदा पढ़ लेते थे, फिर सो जाते। सुम्मा नामा, 2 रकात सुन्नते मौकेदा पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। हत्ता समितु गतीततहु औ खतीततहु, यहाँ तक के सोने की वजह से जो आवाज निकलती है वो भी मैंने सुनी। हमारे यहाँ उसको कहते हैं खर्राटे, उसको गतित के लफ्ज से ताबीर किया या खतीत के लफ्ज से ताबीर किया है। तो रावी कहते हैं हजरत इब्ने अब्बास के हुजूर सुन्नते पढ़ के सो गए तो जो नफ्स नींद की वजह से चलता था उसकी आवाज मैंने सुनी। अब जमात का वक्त हुआ, हजरत बिलाल आए, इत्तिला दी, हुजूर तशरीफ लाइए, वक्त हो गया जमात का, सुम्मा खरज इलस्सलाती, हुजूर फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए रवाना हो गए, जाके फजर पढ़ा दी। ये हो गई रिवायत। अब सवाल है कि तर्जमतुल बाब से रब्त किस तरीके से होगा, क्या रब्त करेंगे तर्जमतुल बाब से। पहली तौजीह कि तर्जमतुल बाब से रब्त किया, इमाम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बाई तरफ खड़े रहे, हुजूर ने उनको पकड़ करके दाई तरफ कर दिया, ये है तर्जमतुल बाब से रब्ता। कि बाब ये है कि रात के अंदर भी तालीम ताल्लुम होना चाहिए ना, तो तालीम ताल्लुम सिर्फ ज़बान से थोड़ा ही होता है, अमल से भी होता है। तो इब्न अब्बास बाईं तरफ खड़े रहे, हुजूर ने पकड़ के दाईं तरफ कर दिया, ये अमली तालीम है। अस्समर बिल इल्मी, रात को इल्म सीखना सिखाना, ये इमाम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की राय है। नंबर दो, तर्जमतुल बाब दूसरा किस तरह होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर क़याम करना, हुजूर के अमल को देखने और सीखने के वास्ते, ये हो गया समर बिल इल्म। इब्न अब्बास क्यों गए थे हुजूर के यहाँ, रात को गौड़ पापड़ी खाने गए थे हुजूर के यहाँ, इसलिए गए ताकि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के मामूलात देखें और सीख करके अमल करें। ये रात का कयाम, यही हो गया समर बिल इल्म। तीसरी तौजी, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकान पर तशरीफ़ लाए तो ये हदीस जब किताबु तफसीर में इमाम बुखारी लाएंगे तो वहाँ एक जुज़्व बढ़ाया है रिवायत में, नतहद्दसु मा अहलिहि साअतन, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद घर तशरीफ़ लाए और अपने अहल के साथ थोड़ी देर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत की। अब हुजूर की बातचीत में दो एहतमाल हैं, हुजूर रात को घर तशरीफ़ लाकर अपने अहल के साथ जो बात करेंगे तो वो इल्मी और दीनी गुफ्तगू ही होगी। तो किताबु तफसीर वाली रिवायत में ये लफ्ज़ ज़्यादा है, हुजूर ने घर तशरीफ लाकर अपने अहल के साथ गुफ्तगू फरमाई, और जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू खालिस इल्मी खालिस दीनी, इसलिए समर मल इल्म साबित हो गया। तो हुजूर ने घर आकर के अहलिया के साथ इल्मी किस्सा गोई बयान फरमाई। और अगर कोई दुनियावी बात की है हुजूर ने तो उससे बदरजे औला समर बिल इल्म साबित होगा, कि जब अहलिया के साथ घर आकर के दुनियावी बात करने का जवाज है तो समर बिल इल्म का बदरजे औला जवाज है। देख लिया कैसे साबित करते हैं तर्जमतुल बाब, कि हुजूर ने आके घर अहलिया के साथ थोड़ी देर बात की, दो एहतमाल, खालिस दीनी बात की है तो समर भी इल्म साबित हो ही गया, और अगर दुनियावी बात की है तो जब दुनियावी बात का जवाब साबित हुआ तो दीनी इल्म बात का तो बदरजे औला जवाब साबित हो गया, बदरजे औला समर भी इल्म साबित हो गया। बहरहाल इस तरीके से तर्जमतुल बाब को साबित करने की कोशिश की है। लेकिन एक जाप्ता समझो, बहुत अच्छा जाप्ता है समझने की बात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक तर्ज अमल बाज मरतबा बाब के मातहत जो रिवायत लाते हैं, तर्जमतुल बाब लिखेंगे फिर उसके मातहत रिवायत लाएंगे, तो उस रिवायत को पेश नज़र रखकर तर्जमतुल बाब कायम नहीं करते। देखो अजीब तर्ज है, तर्जमतुल बाब लिखा रिवायत लाए, लेकिन तर्जमतुल बाब रिवायत के पेश नज़र नहीं लिखेंगे, बल्कि नफ्सुल अम्र में जो वाकिया होता है और वो वाकिया दूसरी किसी रिवायत में होता है उसको पेश नज़र रखकर तर्जमतुल बाब कायम करते हैं। ये अजीब तरीका समझो, क्या खुलासा हुआ। तर्जमतुल बाब लिखा बराबर, उसके ज़ेल में रिवायत लाए। अब ये रिवायत को इस तर्जमे से जाहिर में कोई रब्त नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रब्त नहीं, लेकिन नफ्सुल अम्र में जो वाकिया होता है और वो वाकिया यहाँ नहीं है, दूसरी जगह पर है, उसको पेश नज़र रखकर तर्जमतुल बाब साइन करते हैं। और वजाहत से समझो, ये रिवायत से ये तर्जमतुल बाब साबित करना है, लेकिन इस रिवायत के जिस जुज्व से तर्जमतुल बाब साबित करना है वो यहाँ नहीं है, ये रिवायत का वाकिया जहाँ दूसरी जगह तफसील से लाएंगे वहाँ वो जुज है, और वहाँ के जुज से यहाँ का तर्जमा साबित कर दें। अब समझ में आया था कि भाई नफ्से वाकिया जो हुआ है, नफ्से वाकिया हज़रत इब्ने अब्बास का हज़रत मैमुना के यहाँ कयाम, उस नफ्से वाकिये से तर्जमतुल बाब साबित हो रहा है, लेकिन वो नफ्से वाकिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस जुज़्व से तर्जमतुल बाब साबित हो रहा है वो यहाँ नहीं लाए, बल्कि उसको किसी और जगह लाए और दूसरी जगह ला करके वो जूस के जरिए ये तर्जुमा साबित करते हैं। ये भाई ये ऐसा क्यों करते हैं? तो तशहीज़न लि अज़हानि तालिबीन, तलबा के जहन को तेज करना मकसूद होता है, कि ढूंढते बैठो कि इसमें इस बाप से इस रिवायत से जोड़ क्या होगा, बैठो अब ज़हन लगाओ। तो अब जहन लगाए तो यहाँ तो रिवायत में कोई लफ्ज ही नज़र नहीं आया, अब ये रिवायत बुखारी में कहाँ कहाँ है वहाँ ढूंढने बैठो, और तमाम जगह ये रिवायत में कौन सा लफ्ज़ जायद आया और कौन से लफ्ज़ से ये तर्जमतुल बाब साबित हो रहा है वो ढूंढने बैठो। इस तरह जहन तेज करना मकसूद होता है इमाम बुखारी का। तो अब यहाँ ये तर्जमतुल बाब और ये रिवायत, यहाँ इस रिवायत के जो अल्फाज लाए उससे तो तर्जमतुल बाब में कोई जोड़ दिख विख रहा नहीं है, लेकिन ये रिवायत हम दूसरी जगह ढूंढने निकले, 10 जगह ये रिवायत आई है, तो किताबु तफसीर में हमको एक टुकड़ा मिल गया इस रिवायत में जायद, कि हुजूर रात को घर तशीब ला करके जौजा मोहतरमा के साथ थोड़ी देर के लिए बातचीत की, बस वहाँ से यहाँ का तर्जुमा साबित कर रहे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अब समझ में आया जी। तहज्जुद के बारे में एक बात ये जहन में रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 17 रकात तहज्जुद की साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चलो बाबो हिफ्ज़िल इल्मी, क्या मकसद है इस तर्जमतुल बाब का? नंबर एक, पढ़ा हुआ इल्म याद रखने की कोशिश करो। पढ़ते भी जाओ ने भूलते भी जाओ, क्या शानदार इल्म है। इमाम बुखारी तर्जमतुल बाब लाए भाई, पढ़ो वो याद भी रखो। और याद रखने का बेहतरीन तरीका है आमोख्ता याद करना, दौर करना, तकरार करना, मुजाकरा करना, ये है बेहतरीन तरीका पढ़ी हुई बात को याद रखने का। नंबर दो, पढ़ी हुई चीज़ याद रखोगे तो मुफीद होगी, और याद नहीं रखोगे तो मुफीद नहीं होगी। नंबर तीन, पढ़ी हुई बातें याद करके उसकी इशाअत करो। पढ़ी हुई बातें याद करो और इशाअत करो उसकी। नंबर चार, पढ़ी हुई बातें याद रखने से तबलीग में इशाअत में आसानी होगी। याद रखोगे तो तबलीग भी आसान, इशाअत भी आसान, नशर भी आसान। इसलिए पढ़ी हुई बात याद रखो। बाबू हिफ्ज़िल इल्म बहुत ज़रूरी है भाई, पढ़ी हुई बातें याद रखना। हम लोग कभी तेज़ इबारत पढ़ने में गलती करते थे, हमारे उस्ताद मौलाना वाजिद हुसैन साहब नवर अल्लाह उमर का दो फरमा थे, अरे भाई नहव के रिसाले छोटे छोटे हैं, तो चार महीने में एक मरतबा जुमेरात को दौड़ कर लिया जाए ताकि नहवी कवायद मुस्ताज़र रहें और सही इबारत की पढ़ी जा सके। तो ये हैं हिफ्ज़े इल्म, पढ़ी हुई बात को याद रखें। अब मसलन किताबुन ना हुआ है, इल्मुन ना हुआ है, दो पाँच महीने में एक मरतबा जुमेरात को उसका दौड़ कर ले रहे, अपनी शायन के ख़िलाफ़ ना समझे कि मैं बुखारी पढ़ूँ और किताबुन ना हुआ का दौड़ कर। हाँ भाई दौड़ कर लो ताकि नहवी कवायद मुस्ताज़र रहे और इबारत सही पढ़ सको, गड़बड़ी न कर सको। इस नीयत से दौड़ कर लिया जाए तो कितनी आसानी हो जाए पढ़ने के अंदर। जी حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اشکال کرنا شروع کر دیا۔ یہ اشکال حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں ہی ہوا تھا۔ کیا اشکال ہوا تھا؟ اکثر ابو ہریرہ تھا حضرت ابو ہریرہ بکثرت حدیث بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اشکال کی تعبیر یوں کی ہے کہ ابو ہریرہ عجیب ہیں، بات بات میں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی حدیثوں کا یہ ذخیرہ لائے کہاں سے کہ بات بات میں حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا۔ اس طرح لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ پر اشکال کھڑا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بات پہنچ گئی کہ میں جو کثرت سے حدیث بیان کرتا ہوں تو اس پر لوگوں کو اعتراض ہے، لوگ اشکال کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے دو طریقے سے جواب دیا۔ پہلا جواب کیا دیا؟ ولولا آیتانی فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، قرآن کریم کی دو آیتیں نہ ہوتی تو کبھی میں حدیثیں نہ سناتا۔ یعنی سنی ہوئی حدیثیں میں اپنے تک محدود کر لیتا ہے، سنی ہوئی احادیث کو لوگوں میں اشاعت نہ کرتا، لوگوں میں تبلیغ نہ کرتا، لوگوں میں نہ پھیلاتا، لیکن قرآن کی دو آیتیں مجھے مجبور کیے ہوئے ہیں کہ مجھے لوگوں کو حدیثیں سنانی پڑتی ہے۔ کون سی دو آیتیں؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ یہ دو آیتیں مراد ہیں کہ باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے نازل فرمائی احکام اور ہدایت کی، ہم نے کتاب اللہ میں لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دیا، پھر بھی جو لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، ان پر فرشتوں کی لعنت۔ ہاں جس نے توبہ کی، اصلاح کی اور حدیثیں بیان کر دی تو میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو کا اس آیت میں جو سخت وعید آئی ہے لعنت کی، اس لعنت کی وعید سے بچنے کے لیے میں حدیثیں سنا دیتا ہوں، ورنہ اگر یہ لعنت والی آیت نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہ کرتا، سنی سنائی حدیثوں کو اپنے تک محدود کر لیتا، میں کسی کو نہ سناتا۔ یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ الرحیم تک پھر اصل وجہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس حدیث کا اسٹاک کیوں بہت بڑا ہے۔ ان اخواننا من المہاجرین، ہمارے مہاجرین بھائی، کان یشغلہم الصفق بالاسواق، وہ بازاروں میں تالیاں بجانے میں مشغول تھے۔ صفق کے معنی تالی بجانا، یہاں تالی بجانے کا مطلب کیا ہے؟ عرب میں زمانے قدیم میں ایجاب قبول جب ہوتا تھا، بیع مکمل ہوتی تھی، تو لوگ تالی بجایا کرتے تھے، اسی سے آپ نے لفظ پڑھا ہدایہ میں صفقہ، صفقتن فی صفقتن، یہ تالی پر سے ہے کہ جب ایجاب قبول ہو جاتا تو کہتے بیع ہو گئی بیع ہو گئی، اس کے اوپر سے۔ تو اس کا حاصل معنی کریں گے سودا کرنا، کہ ہمارے مہاجرین بھائی بازار میں سودا کرنے میں مشغول ہوتے۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور ہمارے انصاری بھائی اپنی باڑیوں کے کام میں مشغول ہوتے۔ انصار باڑی میں، مہاجرین بازار میں، یعنی ان کے پاس دنیاوی مشاغل بہت تھے۔ انصاری بھائیوں کے پاس کھیتی باڑی تو باڑی کے مشغلے، مہاجرین کے پاس دکانداری تو دکانداری کے مشغلے۔ را ابو ہریرہ، کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے لپٹے رہتے تھے۔ ساتھ میں تو ایمان لائے، سن 7 ہجری میں، اخیری زندگی میں، اور ایسے لگے لپٹے رہے کہ پھر حضور کا دامن چھوڑا ہی نہیں۔ ہر وقت حدیث سننا، یاد کرنا، اشاعت کرنا، انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، اسی لیے حضور کی صحبت کم ملی، लेकिन कसरत से रिवायत की उनको सआदत हासिल हो गई। लगे लिपटे रहते थे, कैसे लगे लिपटे रहते थे, बिशिबी बतनी ही पेट भर खाने की फिक्र में। यानी अबू हुरेरा को कोई ज्यादा खाने पीने के खजाने जमा करने की फिक्र नहीं थी, पेट भर रोटी मिल जावे बस काफी है। हर वक्त हुसूल इल्म में अबू हुरेरा रहते थे, और पेट भर रोटी तो सुफ़ा वालों को कोई भी खिला देता था, हुजूर के दस्तरखान पर भी मिल जाती थी, हुजूर के पास कहीं से कुछ आ गया उसमें भी हिस्सा मिल जाता था। मुझे सिर्फ पेट भर रोटी की फिक्र मिलती रहती थी, और बाकी हमारे मुहाजिरीन और अंसारी भाई कारोबार बाड़ियों में मशगूल रहते थे। इसीलिए अबू हुरेरा के पास हदीस का ज़खीरा ज़्यादा हो गया। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जुज़्व से इस्तिदलाल किया है कि तालिब इल्म के लिए शिबे बतन काफ़ी है। एक तालिब इल्म को फिक्र काई का होना चाहिए, पेट भर रोटी मिल जावे बस काफ़ी है, उससे ज़्यादा तालिब इल्म के चक्कर नहीं होने चाहिए, तो वो इल्म में कमाल हासिल करेगा, इल्म में तरक्की हासिल करेगा। जिसका यही फिक्र है बस वक्त पर सुबह में रात में पेट भर खाना मिल जावे काफ़ी है। वयाह दूर, दूसरा तर्जुमा बीशी भी बता नहीं का, पेट भर जावे इस कदर इल्म की फिक्र में मुकीम रहते थे। शिबे बतन भी ताम नहीं बिल इल्म, कि अबू हुरेरा पड़े रहते थे, लगे रहते थे कि बस शिकम शेरी होवे तो इल्म से होवे, इसकी फिक्र में हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में लगे रहते थे। वयहदुरु मा ला यहदुरून, लिहाजा मुहाजिरीन और अंसार जिन अवकात में हाजिर नहीं होते थे उन अवकात में अबू हुरेरा हाजिर रहते थे। यानी जब भी हुजूर ने कोई बात इरशाद फरमाई, मजलिस फरमाई, वास फरमाया, काफला आया, साइल आया, मुस्तफ़ी आया, हर वक्त अबू हुरेरा मौजूद। इसीलिए हुजूर से कसरत से इस्तीफादे का मौका मिल गया, और मुहाजिरीन और अंसार अपने कामकाज में रहते थे। वयहफ़ज़ू मा ला यहफ़ज़ून, और अबू हुरेरा ने वो बात याद कर ली जो मुहाजिरीन और अंसार भाइयों ने याद नहीं की। बस इल्तिज़ाम, तालिबे इल्म इल्तिज़ाम करे साहिबे इल्म का तो उसके इल्म के अंदर इजाफा होगा, और मजीद दुआ का भी एहतमाम हो। दुआ के इस बात पर आगे वाला रिवायत ला रहे हैं, यहाँ इल्तिज़ाम के ऊपर ये रिवायत ला रहे हैं। मालूम हुआ कि तालिब इल्म पढ़ा लाजिमी इल्तिज़ामी, यानी कि बगैर गैर हाजिरी और बगैर नागा किए हुए, तो उसके इल्म में बरकत होगी, और उसको याद रखने की कोशिश करे बहुत ज़रूरी है। हज़रत अबू हुरेरा कैसे लगे लिपटे रहे, बस तालिब इल्म को भी पढ़ने के ज़माने में इसी तरह लगा लिपटा रहना पड़ेगा, तब जाके इल्म हासिल होगा। नानी की शादी ने, दादा के भाई की शादी ने, ये सब कोई छुट्टी लेने के उन्वान है। चलो حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، بہت ساری سنتا ہوں، انسا ہو لیکن بھول جاتا ہوں. دیکھو حضرت ابو ہریرہ کا طرز عمل ہمارے لیے نصیحت ہے کہ طالب علم اپنی مشکلات اپنے بڑوں کے سامنے پیش کرے. کیا مشکلات ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو ایک مشکل ہی پیش آئی، حدیثیں سنتے تھے بھول جاتے تھے، تو انہوں نے اپنی مشکل بات اپنے مشفق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ حضور میں حدیثیں بھول جاتا ہوں، کوئی تدبیر آپ مجھے بتلائیے. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابسط رداءک، ابو ہریرہ تمہاری چادر قال ابسط رداءک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ. فبسطتہ، میں نے اپنی چادر پھیلا دی. فغرف بیدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اشارہ فرمایا. دیکھو ایک سمجھانے کی تعبیر کر رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کیا کہ حضور جو حدیثیں میں آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. حضور نے فرمایا چادر بچھا. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلا دی. اب چادر پھیلانے کے بعد کیا، جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اپنے پاس یہاں بادام رکھے ہوئے ہیں، اجی طالب علم چادر بچھائیے، بچھا دو، یوں کر کے دو ہتھیلیوں میں بادام لی، ڈالی، لے کشمش، لے اخروٹ، لے، اس طریقے سے دو لب بھر بھر کے چادر میں ڈال دے گئے، ڈال دیے، پوٹلی باندھ لے جا، روز صبح میں اب کھاتے رہنا. یہ اب یہاں تو چیزیں ہیں اور نظر آ رہی ہے، اور اس کے دو ہتھیلی سے بھر بھر کر کے چادر میں دیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو چادر بچھوایا اور دو ہاتھ سے بھر کے ڈالنے کا اشارہ فرمایا، اور ظاہر میں کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ کیا ڈالا. سمجھے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے जिस तरह कोई महसूस चीज दो लपों में भर करके डाली जाती है, इस तरह का इशारा फरमाया। कोई चीज हुजूर ने भर करके अबू हुरेरा की चादर में डाल दी हो, ऐसा इशारा फरमाया, लेकिन जाहिर में नजर आने वाली कोई चीज नहीं डाली। क्या डाला? जाहिर में खाली हाथ थे लेकिन हकीकत में इल्मी खजाइन थे। नंबर दो, इल्म की सूरत मिसाली हुजूर ने भर करके अबू हुरेरा की चादर में डाल दी। इल्म की सूरत मिसाली हुजूर ने लब भर भर के अबू हुरेरा की चादर में डाल दी। सुम्मा काल, फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, दुम्मा अबू हुरेरा इस चादर को सीने से मिला लो, ये चादर को सीने से मिला लो। फदमम तू हो, मैंने अपने सीने से चादर को मिला लिया। फमा नसी तू शई अनबाद, उसके बाद कभी कोई चीज मैं नहीं भूला, उसके बाद कभी कोई चीज मैं नहीं भूला। हजरत अबू हुरेरा फरमाते हैं, बहुत सो का खाली बहुत सो के भरों से बेहतर होता है, बहुत सो का जाहिरन खाली बहुत सो के जाहिरी भरे हुए से बेहतर होता है, इसको कहते हैं। जाहिर में खाली, हुजूर ने क्या डाला कुछ नजर नहीं आया, लेकिन ऐसी चीज भर दी कि फिर अबू हुरेरा की जिंदगी की काया पलट गई, और बाद में कभी कोई हदीस हजरत अबू हुरेरा नहीं भूले, काम बन गया हजरत अबू हुरेरा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है। अब दूसरा तरीक देखो, हद्दसना इब्राहिम इब्न मुंजिर, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इब्राहिम इब्न मुंजिर कहते हैं, हद्दसना इब्न अबी फुदेक बिहाजा, इस दूसरी सनद में इमाम बुखारी ने इख्तिसार किया है। पहली सनद में जो तुल है, दूसरी सनद में इख्तिसार किया है, और अलामत नबूवत नाम की किताब के अंदर उसकी तफसील मौजूद है। वकाल, और उसमें ये जुमला जायद मौजूद है, फगरफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ भरे, बियदिही फीही अपने मुबारक हाथों से उसमें। देखो, अव्वल सनद में तस्निया आया और यहाँ वाहिद आया, ये फर्क है। सनद अव्वल में क्या लफ्ज पढ़ा आपने कि बियदिही, और यहाँ वाहिद आया बियदिही, ये इसमें जींस के माने में रहेगा, बियदिही मफहूम वही रहेगा जो बियदैन का है, और माना मुफरद होने के बावजूद इसमें जींस वाला। तो अगर जी यहाँ दूसरी सनद में जिसने इख्तिसार किया है उसमें तस्निया नहीं है लेकिन मफहूम तस्निया वाला ही है इसमें जींस की वजह से। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, आपकी तवज्जुहात आलिया और आपकी मानवी इनायत कि अबू हुरेरा के पास अहादीस का इतना बड़ा स्टॉक जमा हो गया, और साथ में हजरत अबू हुरेरा का इल्तिज़ाम कि उन्होंने हुजूर को लाजिम पकड़ लिया, जिसकी बरकत से इतनी सारी हदीसें याद हो गई। अब ये जो जुमला है हजरत अबू हुरेरा का, फमा नसी तो शई अन बादो, कि इसके बाद मैं कभी कोई चीज नहीं भूला, इस पर एक इश्काल है।